करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा। द्वार खुला रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा।
ओम शांति। एक खरगोश बहुत घमंडी हो गया, जंगल में जिसको देखता उसको दौड़ के लिए चुनौती देता। और एक बार एक खरगोश ने एक कछुए ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों में दौड़ हुई। खरगोश चपल था, तेजी से भागते हुए बहुत आगे निकल गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दूर दूर तक कहीं नहीं। उसे लगा कि थोड़ा आराम करता हूं और वो सो गया। परंतु कछुआ मंद गति से भागता रहा, दौड़ता रहा और धीरे धीरे मंजिल तक जा पहुंचा। जब खरगोश ने आंख खोली तो देखा कछुआ बहुत दूर तक चला गया है। तेज भागा परंतु जीत ना सका और वो कछुआ जीत गया। यहां तक की कहानी हम बचपन से सुनते आए। कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। जब हार हो गई तो खरगोश निराश हो गया। उसको लगा थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए, क्यों हार हुई। थोड़ा लाइब्रेरी में गया, थोड़ी किताबें पढ़ी, कुछ क्लासेस सुनी अच्छी अच्छी, आत्म परीक्षण किया, निरीक्षण किया, जब साधना की, मंत्र जाप किए, ध्यान लगाया, थोड़ा योग का अभ्यास किया और उसे पता चला मेरी कहां भूल हुई। दूसरे दिन उसने उस कछुए को फिर से चुनौती दी कि आज फिर से हम दोनों दौड़ करेंगे और दोनों की दौड़ फिर चालू होती है। और इस बार खरगोश बहुत सतर्क है। जैसी भूल उसने पिछले दिन की थी वैसी उसे आज नहीं करनी है, इसलिए वो तेजी से भागा, अंत तक तेजी से भागा और जीत गया। बाकी कछुआ जिसने चुनौती स्वीकार कर ली थी क्योंकि अभी अभी जीत हुई थी, सोचा इस बार भी जीत हो जाएगी, पर हार हो गई। कछुआ थोड़ा सा उदास हो गया। उसने सोचा मुझे भी कुछ आत्मा परीक्षण करना चाहिए। उसने भी थोड़ा सा ध्यान लगाया, कुछ मैनेजमेंट की किताबें भी पढ़ी, और फिर उसे पता चला रणनीति में खोट थी। मेरा और उसका तो सामना ही नहीं हो सकता, और ऐसा ही चालू रहा तो मैं तो कभी जीत ही नहीं सकता, और उसने एक योजना बनाई। तीसरा दिन फिर से अब उस कछुए ने चुनौती दी खरगोश को, पर एक शर्त है कि इस बार रास्ता मैं तय करूंगा कौन सा होगा। और दोनों की दौड़ चालू होती है और खरगोश तेज भागते हुए आगे निकल जाता है, पर बीच में अब नदी है एक, और नदी की तेज धारा में खरगोश कैसे जाए। तब तक कछुआ वहां जाता है और कछुआ नदी को बड़ी आसानी से पार करके आगे चला जाता है और जीत जाता है। अब चौथा दिन कहानी आगे बढ़ रही है, अब तक दोनों की थोड़ी दोस्ती भी हो गई है साथ साथ दौड़ दौड़ के। सोचते हैं कि हम दोनों में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको एक दूसरे से ताकतवर बनाती है। कितना ना अच्छा हो कि हम दोनों साथ में दौड़े। देखते हैं क्या होता है। तुम मेरी खामियों को जानते हो, मैं तुम्हारी, तो क्यों ना हम दोनों की शक्तियां एक हो जाए। और फिर चौथे दिन फिर दौड़ होती है, पर इस बार खरगोश कछुए को अपने पीठ पर लेकर भागता है। फिर नदी आती है, अब कछुआ खरगोश को अपने पीठ पर लेता है, नदी पार करते हैं और फिर कछुआ खरगोश के पीठ पर, और दोनों जीत जाते हैं। संगठन का बल तो इसमें दिखाई दे रहा है, परंतु एक सूक्ष्म बात है, हार हुई, रुक नहीं गया खरगोश, परीक्षण किया, निरीक्षण किया, उचित अवसर की तलाश की, ज्यादा मेहनत की, और कछुए ने अपनी रणनीति को बदला कि जरूर कुछ और किया जाए, कुछ अलग किया जाए जिससे हार ना हो। दोनों ने अवसर की तलाश की, रुके और फिर से प्रयत्न किया, और फिर अंततः दोनों ही जीत गए। इस ब्राह्मण जीवन में भी कई बार शायद हार होगी। आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, अगर हार हो गई तो कदम में पदम कहां से। यहां जो पेपर है उसकी जांच कौन करेगा, तुम खुद को ही खुद के पेपर की जांच करनी पड़ेगी। जो चाहिए वो बन सकते हो, पा सकते हो। हार भी जाओ, आत्मनिरीक्षण करना, उचित अवसर की तलाश करना, और अवसर आएगा और जैसे ही आएगा फिर कोशिश करना, ज्यादा मेहनत करना, और जीत फिर तुम्हारी होगी। सब कुछ निर्भर करता है अब पर, अब के समय पर, इस जन्म पर, इस जीवन पर, इस युग पर। कल की अव्यक्तवाणी, जीवन, जन्म और युग तीनों ही आधार है 21 जन्मों के, या कहो 84 जन्मों के। तो कल की अव्यक्तवाणी में किसने किसको देखा, बाबा क्या बनकर आया है, सुप्रीम ऑडिटर सेविंग अकाउंट्स चेक कर रहा है। सुप्रीम ऑडिटर क्या चेक कर रहा है, अकाउंट्स चेक कर रहा है, जमा का खाता चेक कर रहा है। वो जो लॉफुल है, वो अपने बच्चों के जमा के खाते को चेक कर रहा है। चार प्रकार के खाते चेक किए, पहला ज्ञान, चार या पांच, चार या पांच, पांच खजाने चेक किए खाते। पहला ज्ञान, आज की मुरली में छोटे छोटे अक्षरों में कितना ज्ञान भरा है। यहां तुम आए हो रिवाइज करने, सुबह की साकार मुरली, छोटे थोड़े थोड़े अक्षरों में कितना ज्ञान भरा है। कल की अव्यक्त वाणी में कम से कम आठ स्लोगन बाबा ने दिए हैं। पहला खाता ज्ञान, ज्ञान किसने कितना भरा है। कल की साकार मुरली थी, तुम गाफिल हुए पड़े हो, बाप आए हैं तुम्हें जगाने, बच्चों जागो। परसों, ज्ञान से हमने अपने आप को कितना भरा है। ज्ञान प्रकाश है। लास्ट संडे की मुरली, लास्ट संडे के लास्ट संडे की, नंबर वार क्यों है, क्योंकि किस किस ने इस ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में धारण किया और किन किन बच्चों ने इसको शक्ति के रूप में धारण किया है। केवल पंडित बन के नहीं रह जाना है जो पॉइंट्स को रिपीट करे। ज्ञान, दूसरा शक्ति, शक्तियों को कितना धारण किया है। बाबा ये जमा का खाता चेक कर रहे हैं, चार काम कर रहे हैं बाबा। एक तो जमा का खाता चेक कर रहे हैं, दूसरा बच्चों से कह रहे हैं तुम स्वयं का खाता खुद चेक करो, तीसरा बाप को मजा आता है क्या देखकर, बच्चों को देखकर मजा आता है, और चौथा बच्चों की रूहानी खुशबू लेकर बाप को मजा आता है। तीसरा खाता समय का, चौथा खाता संकल्प का। बहुत शक्तिशाली वाक्य है मुरली में, एक एक श्रेष्ठ संकल्प का क्या पदम गुना फल है, उसी तरह एक एक व्यर्थ संकल्प का भी पदम गुना फल है। ये अनुभव की बात है, एक एक श्रेष्ठ संकल्प का पदम गुना फल है। पांचवा खाता कौन बताएगा, समय तो हो गया ना, समय संकल्प ज्ञान शक्ति अव्यक्त वाणी कल की। व्यर्थ संकल्पों का खजाना क्या कहा, ये तो रावण का खजाना है। सेवा के जमा के खाते का खजाना, अविनाशी बैंक में सेवा का खाता बाप देख रहे हैं। याद प्यार में बाबा ने कहा, बाप कौन सा खजाना देख रहे हैं, सेवा का भी खजाना देख रहे, सेवा का भी खाता चेक कर रहे, अविनाशी बैंक में ये खाता जमा हो जाता है। तो ऐसे पांच खाते, द सुप्रीम ऑडिटर सेविंग अकाउंट्स चेक कर रहा है, किसके अकाउंट में कितना कितना है। और इनके आधार पर क्या होगा, राज्यपद और पूज्य पद, ये दो बातें होगी। इस जीवन के आधार पर, इस जन्म के आधार पर और इस युग के आधार पर, अर्थात किसने कितना ज्ञान धारण किया है उस आधार से भविष्य होगा, किसने कितनी शक्तियां भरी है उस आधार से भविष्य होगा, समय का कैसा उपयोग किया है, सदुपयोग किया है उस आधार पर भविष्य होगा, संकल्पों के साथ क्या किया है उस आधार पर भविष्य होगा, और सेवाएं कितनी की है उस आधार पर भविष्य होगा। संकल्पों को क्या किया, एक बाप में लगाया या कहीं और? आज की मुरली में है, हाईएस्ट चार्ट उनका है जिनका, जो कदम कदम पर श्रीमत है, और बाकी सब अप डाउन अप डाउन अप डाउन। याद की करामात, याद का चमत्कार। तो पहला स्लोगन मुरली से, अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है अब करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। दूसरा स्लोगन मुरली से, तुरंत दान महापुण्य। तीसरा स्लोगन एक धक से जो झाटकू है वो महाप्रसाद। एक धक से झाटकू सो महाप्रसाद। चौथा स्लोगन दृढ़ता सफलता की चाबी। पांचवा स्लोगन कहो या दो तीन शब्द का चाहिए, लंबा लंबा नहीं। अलग हुआ और गया। क्या कहा? अलग हुआ और गया। महापुण्यात्मा सो महापूज्य आत्मा। अगला स्लोगन कैच वर्ड्स क्या था? और दो है, चलो आते हैं, पहले मुरली चालू करते हैं। तो अब नहीं तो कब नहीं, जो जो अच्छा मन में आता है, जो जो शुद्ध संकल्प मन में आते हैं, जो जो श्रेष्ठ संकल्प मन में आते हैं, तुरंत कर देना है, नहीं तो माया चार काम कर देगी। माया को मार्जिन मिल जाएगी, माया को चांस मिल जाएगा, माया का प्रभाव होगा, माया आ जाएगी और खा भी जाएगी। माया का प्रभाव पड़ जाएगा अगर समय दिया तो। इसके लिए जो जो श्रेष्ठ संकल्प मन में आते हैं, जो जो महान संकल्प मन में आते हैं, उनको तुरंत कर देना है, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है। सोचते रह गए तो त्रेता में पहुंच जाएंगे, सोचते रह गए तो दूसरा, सोचते रहेंगे तो किस मठ पंथ में पहुंच जाएंगे? उदासी और सन्यासियों के मठ पंथ में पहुंच जाएंगे। सोचते रहे तो छत पर घूमते रहेंगे, या नदी किनारे, या पहाड़ पर, या तो जंगल में चले जाएंगे। एक व्यक्ति एक चित्रों के दुकान में जाता है, जहां पर दो बड़े विचित्र चित्र उसे दिखाई देते हैं। एक चित्र है एक महिला का, जिसके बड़े बड़े बाल हैं और उसका चेहरा ढका हुआ है, और वो गौर से देखता है, उसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। और दूसरा एक चित्र है जो एक व्यक्ति का है, जो कि उधर देख रहा है और पीछे से सिर गंजा है। वो कहता है, ये क्या है? वो दुकानदार उसको समझाता है, ये जो पहला चित्र है ये अवसर का चित्र है, जो कि चेहरा ढका हुआ है, कब आता है पता नहीं चलता है, और पैरों में पंख है, उड़ जाता है अवसर, अगर उसका फायदा नहीं लिया। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बहन से कहा था, बच्ची जाओ आबू रोड, ट्रेन अभी उधर पालनपुर तक पहुंच गई है या उससे पहले, तुमको जाके वहां पे कुछ सेवा करनी है और आगे जाना है उसी ट्रेन से। वो बहन ने कहा, नहीं बाबा, मेरा ये, मेरा वो, मेरे कपड़े गीले, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वैसा। फिर बाबा ने दूसरी बहन को कहा, जो तुरंत तैयार हो गई और उसके द्वारा बहुत बड़ी सेवाएं हो गई। और पहली पछताती रह गई, मैं क्यों नहीं चली गई। जब अवसर मिल जाए तुरंत पकड़ लेना, पता नहीं ऐसा अवसर आएगा कि नहीं आएगा। ये नहीं सोचते बैठना कि बाद में देखूंगा, बाद में सोचता हूं, इससे भी अच्छा अवसर आ सकता है, ये तो कुछ नहीं, तुरंत पकड़ लेना। व्यक्ति दुकानदार से पूछता है, ये दूसरा चित्र किसका है? वो कहता है, ये उस व्यक्ति का है, उसके सामने तो बाल थे, अगर तुमने सामने के बाल नहीं पकड़े तो पीछे घूम जाएगा और भागेगा, फिर तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पीछे गंजा है। अवसर, ये दोनों ही अवसर के चित्र है। अवसर दबे पांव आता है, अचानक से आता है, हमें तैयार रहना है। इफ नॉट नाउ देन नेवर, ये स्लोगन है मुरली का। अब नहीं तो कब नहीं, द टाइम इज नाउ। अब करना है, अभी करना है, अभी संकल्प करना है, अभी सोने से पहले कि सुबह का अमृत वेला कितने बजे उठना है, सुबह के अमृत वेले की क्या क्वालिटी हो, कैसा वो होना चाहिए। अभी सोते समय, सोने से पहले ही किस स्थिति में हम सो रहे हैं, उसी स्थिति में सुबह उठेंगे। रूहानी यात्रा करते करते सोना है। इस यात्रा में है डेड साइलेंस और उधर है आवाज। सुबह कहा ना, डेड साइलेंस में यात्रा करते 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 सो जाना है, तो उसी शक्तिशाली स्थिति में आत्मा उठेगी, जागेगी। तो पहला स्लोगन, जो करना है अब करना है। एक लिस्ट बनानी है, मुझे क्या क्या करना बाकी है, ज्ञान में क्या करना बाकी है, योग में क्या क्या अभी करना बाकी है, कौन सी धारणाएं अभी भी कच्ची है, सेवाओं में कौन सी ऐसी सेवाएं जो अब तक मैंने नहीं की है, और पांचवा, संपूर्ण प्यूरिटी के लिए अभी और कौन सी स्टेप्स लेना बाकी है, क्यों अभी तक संपूर्ण पवित्रता की अवस्था नहीं आई है। बाबा ने सुबह कहा, खुद का पेपर खुद ही जांच करो, उनका पेपर तो कोई बाहर से आता है जांच करने, तुम्हें अपना पेपर खुद ही जांच करना है। कितनी बड़ी बात बोल दी है। लास्ट संडे बोला था, अपनी फिल्म अपनी आप ही देखो, जब नाजुक हो जाते हो, रस्सी में गांठ पड़ गई है, कमजोर है, क्यों निर्विघ्न क्यों नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा स्लोगन, तुरंत दान महापुण्य। अंग्रेजी कवि और लेखक और विचारक मार्क ट्वेन ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, पहले भी कभी सुनाया था, चर्च में जाकर बैठता है और वो जो पादरी है दान पुण्य पर प्रवचन कर रहा है, और मार्क ट्वेन इतना प्रभावित हो जाता है उसका भाषण सुनकर, सोचता है आज तो मुझे $10 किसी भी हाल में देने ही देने हैं, क्योंकि भाषण ही इतना शक्तिशाली है। परंतु भाषण पूरा होता है फिर सोचता है $10 थोड़े ज्यादा हो गए, दान पेटी घूमने लगती है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, देखता है लोग तो बहुत ही कम दे रहे हैं, $5, सोचते हैं ठीक है पांच देता हूं। उसके आगे वाली पंक्ति तक आती है वो दान पेटी, देखता है लोग तो $1 या $2 ही दे रहे हैं, उसकी लाइन में आती है, सोचता है भगवान कभी पैसे थोड़ी मांगता है, भगवान कहता है मुझे प्रेम चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा समर्पण चाहिए मुझे, उसने कभी कहा है मुझे पैसे दो? छी छी, मैं भी क्या सोच रहा था, और जब दान पेटी उसके पास आती है तब तक वो सोचता है चलो देखता हूं $1 या नहीं, हाँ ना हाँ ना, और जब दान पेटी उसके पास आती है इधर उधर देखता है उसमें से पैसे निकाल लेता है और फिर रूम पर जाकर सोचता है ये मैंने क्या किया, ऐसा हुआ क्यों, सोचा क्या था और ये क्या हो गया। सोचना और करना। अगला स्लोगन, जो करेगा वो पाएगा, यह भी एक स्लोगन है उसमें। दान तुरंत करना है। सुबह सोचेंगे, तन मन धन तीन उदाहरण दिए बाबा ने, 50-50% नहीं, तुरंत जो विचार आया, तन से इतनी सेवा करनी है, कितने घंटे करनी है, कितना घंटा योग करना है, तुरंत डिसीजन लेना है और तुरंत कर देना है, रुकते नहीं बैठना है। अगला उदाहरण दिया झाटकू का, पहाड़ों पर मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, वहां एक और सूक्ष्म नियम है, बलि से पहले पानी के छींटे छिड़कते हैं, अगर वो पानी के छींटों से भी वो डरता है चिल्लाता है रिजेक्टेड, अस्वीकार कर दिया जाता है उस बकरे को। स्वीकार किसे किया जाता है, जो झाटकू एट वन स्ट्रोक। इंस्टेंट चैरिटी, इंस्टेंट डोनेशन हाईएस्ट चैरिटी, तुरंत दान महादान है, महापुण्य है। और चिल्लाना अर्थात सोचता हूं देखता हूं ऐसा होगा वैसा होगा, सोचते ही रह जाते हैं। अब नहीं तो कब के बाबा ने चार फायदे बताए हैं, कौन कौन से, कल सुनी ना रिवीजन क्लास। पहला, किसी भी श्रेष्ठ कार्य से पहले अगर ये संकल्प हो, ये स्लोगन याद हो कि जो करना है तुरंत करना है, तो वो कार्य श्रेष्ठ होगा और तीव्र हो जाएगा। दूसरा, उमंग उत्साह बढ़ेगा। तीसरा, रूहानी जागृति आएगी और जो सामान्य संकल्प है वो नष्ट हो जाएंगे और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर अब के अब कर दिया तो ये चार। चीजें हो जाएगी। तो जो काम करना है तुरंत करना है, तुरंत दान करना है, झाटकू बनना है, रुकते नहीं रहना है, किसी दूसरे भविष्य में आने वाले अवसर के लिए नहीं रुकना है। जैसे एक युवक, उसे शादी करनी है, वो जाता है उस कन्या के पिता के पास और कहता है मुझे आपकी कन्या से शादी करनी है। पिता कहता है एक शर्त है। पिता बड़ा किसान है, खेत है, वो कहता है मेरे पास तीन सांड है, तुमको उनमें से तीनों में से किसी की भी एक की पूंछ पकड़नी है। वो कहता है मैं तैयार हूं। वो खेत में जाके खड़ा हो जाता है, उधर से वो पहला सांड छोड़ते, पर वो इतना भयंकर है, इतना भयावह, वो सोचता है इसको जाने दो, दूसरे और दो तो है ना, किसी एक की तो पकड़नी है, ये तो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। वो हट जाता है, उसको जाने देता है, दूसरे का इंतजार करता है। दूसरा तो उससे भयंकर है, वो उससे भी बड़ा है साइज में और शक्ति में, सोचता है इसको भी जाने दो, तीसरा तो है ही। और तीसरा जैसे आता है एकदम खुशी चेहरे पे छा जाती है, एकदम पतला दुबला सा लुकड़ा सा, सोचता है बस अब काम हो गया मेरा। और जैसे ही वो आता है देखता है उसको पूछ ही नहीं है, अवसर तो गया, हाथ में आया हुआ अवसर गया। इंस्टेंट डिसीजन लेने होते कई बार जीवन में, रुकते नहीं बैठना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि जो कुछ किया वो तुरंत किया, झटकू महाप्रसाद बन जाता है, नहीं तो महाप्रसाद नहीं बनता, नहीं तो दान कहा जाएगा, महादान नहीं कहा जाएगा। और ये बाबा ने किया, फिर से चार बातें हो गई, चार 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 बहुत जगह मुरली में है। कौन सी चार बातें हो गई ब्रह्मा की? सबसे पहला तो बाल रूप में पूजा वल्लभाचार्य, भारत में बहुत बड़ा सांप्रदाय, ब्रह्मा बाबा भी जिसके फॉलोअर थे वल्लभाचार्य, वो कृष्ण को मुख्य रूप से बाल रूप में उनकी पूजा करते हैं। जैसे सूरदास के सारे गीत भजन कविताएं संगीत कृष्ण को किस रूप में देखते हैं, उसका कृष्ण गीता वाला कृष्ण नहीं है, गोपियों वाला कृष्ण नहीं है, उसका कृष्ण बाल कृष्ण है, छोटा सा कृष्ण जो उसके पीछे पीछे भागता है सूरदास। ब्रह्मा ने जो कार्य किया उस आधार से बड़े बड़े सांप्रदाय बन गए द्वापर से, उसकी बाल रूप में पूजा के लिए एक बड़ा सांप्रदाय निर्माण हो गया। दूसरा राधे कृष्ण, एक दूसरा सांप्रदाय तैयार हुआ निंबार्काचार्य, जो युगल रूप में कृष्ण की पूजा चालू की द्वापर से, निंबार्काचार्य। पहला पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का, फिर निंबार्काचार्य, उसके बाद में तीसरा गोप गोपिया, ये तो सबसे बड़ा सांप्रदाय चालू हुआ, मधुरा भक्ति मीरा चैतन्य और कितने सारे भक्त जिन्होंने कृष्ण को युगल माना अपना, गोप गोपियों से उनकी भक्ति थी। और चौथा लक्ष्मी नारायण, स्वामी नारायण सांप्रदाय है, उसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, और बहुत सारे सांप्रदाय से टेम्पल्स है भारत में। तो ये चार यादगार उसके बन गए, किस आधार से बन गए, क्योंकि अब क्या किया, तुरंत दान किया, अब नहीं तो कब नहीं, ये जीवन में चरितार्थ कर दिखाया और झटकू बन गए। अब यहां पर बाबा ने बहुत विस्तार किया है एक बात का, करना, सोचना और करना, इसके बीच में कहा माया आ जाती है, प्रबल हो जाती है, चांस ले लेती है, मार्जिन मिल जाती है, और फिर क्या सोचने लगते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए था, क्या मैं ये हूं, क्या मैं ऐसा हूं, क्या ये मैंने किया, अपने आप को नहीं जान सकते, व्यर्थ संकल्प चालू हो जाते, और व्यर्थ करते करते क्या हो जाते हैं, फिर उसका विस्तार होता है, अकेले हो जाते हैं और बाप से अकेले हो जाते हैं। और माया आक्रमण कब करती है, जब हम बाबा से दूर चले जाते हैं, जब अकेले बन जाते हैं। हाँ बाबा ने कहा चिंतन मनन करने के लिए भले एकांत में जाओ, परंतु बाप से अकेले नहीं हो जाओ, क्योंकि ये युग है कंबाइंड रहने का युग, ऐसी जोड़ी कभी नहीं मिलेगी कि मैं और वो साथ साथ है। लक्ष्मी नारायण की भी जोड़ी फेल है इस जोड़ी के सामने, जहां आत्मा परमात्मा के साथ चल रही है, उसकी यादों में चल रही है, याद की करामात सुबह की साकार मुरली। केवल मेरा बाबा शब्द याद रखो, बाबा शब्द याद रखो बस। और थोड़ा कुछ करना भी पड़ेगा, अगर बाप से प्यार है तो पुराने जहन को क्या कर दो, कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो पुराने जहन को कुर्बान कर दो, छोड़ दो वो सारी चीजें जो बाप और मेरे बीच आ रही है, छोड़ दो वो सारी चीजें जो भगवान और मेरे बीच में बाधा है, रिजेक्ट एज पॉइजन। वो कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति अगर है तो उसे हटा दो, वो संबंध कोई है तो उसे नष्ट कर दो, वो वस्तु कोई है, वो साधन कोई है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पुरानी यादें है, पुरानी स्मृतियां है, वर्तमान की कोई हलचल है, यह हो सकता है कोई सेवा ही हो जो ही विघ्न का कारण बन गई है, पर वो भगवान से दूर कर रही है, वो सेवा वास्तव में सेवा है ही नहीं। पुराने जहन को कुर्बान कर दो। समर्थ संकल्प में पदम गुना फल समाया हुआ है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आपका वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, ये अगला स्लोगन, 8 हो गए। वायदा है सफलता की चाबी कौन सी है? दृढ़ता। अगर सफलता नहीं है अर्थात दृढ़ता कम थी, जैसे उस खरगोश ने अपना निरीक्षण किया, जैसे उस कछुए ने अपना निरीक्षण किया, क्यों हार हुई? शायद दृढ़ता कम थी, शायद स्ट्रैटेजी गलत थी। अपनी रणनीति को बदलना है, शायद मेहनत कम पड़ गई थी पिछली बार इसलिए ऐसा हुआ। मेहनत को बढ़ाना है, शायद मार्ग ही गलत ले लिया था। व्यर्थ का भी विस्तार है, व्यर्थ का भी हिसाब है, व्यर्थ का भी पदम गुना फल है। और क्या फल है? उदास हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले हो जाते, और फिर द्वापर में आएंगे और फिर त्रेता तक पहुंच जाएंगे और उधर मठ पंत, जो कि ब्राह्मण जीवन नहीं है। फिर रोक नहीं सकते, व्यर्थ को रोकने के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर चाहिए। परवश हो जाती आत्मा, पता है उसे ये नहीं करना चाहिए फिर भी करती है, और फिर कहती है पता नहीं मेरे से ये क्यों हो गया। व्यर्थ में ऐसा पावर फोर्स है, और व्यर्थ से भी ज्यादा फोर्स है निगेटिव में, और निगेटिव से भी ज्यादा फोर्स है विकारों में, और विकारों में भी सबसे ज्यादा फोर्स है काम में। व्यक्ति हार कर थक कर गिर जाता है, कहां से कहां गिर पड़ते हैं आज की साकार मुरली सुबह की, कहां से कहां गिर पड़ते हैं। अगर गिरे बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता है। जिन बातों में पक्के हैं वो तो पक्के हैं, उसमें ज्यादा और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जो सबसे माइन्यूट सबसे गुह्यतम कमी है वो हमारे पकड़ में ही नहीं आती है, क्योंकि वह अवचेतन मन का हिस्सा है। हम सोचते हैं चेतन मन में, अवचेतन मन तक पहुंच नहीं पाते, अंधेरी गुफा है। एक टॉर्च लेके अंदर जाना पड़ेगा, और टॉर्च जहां पर हम दिखाएंगे केवल उतना ही हिस्सा प्रकाशित होता है, बाकी फिर भी अंधेरा ही रहता है। कई बार टॉर्च लेकर अंदर जाते दिखाई देता एक ही हिस्सा और वापस आ जाते, और बहुत सारा हिस्सा तो अंधेरा ही रह गया है। वहीं तो वासनाएं छिपी है, वहीं तो संस्कार छिपा है, हड़बड़ी का, बेचैनी का, विकार का। और जो निकलता है अचानक काम विकार, उस अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह है जिससे हम बहुत नफरत करते, जिसको देखना ही नहीं चाहते, वैसा पड़ोसी है, अचानक से आ जाता है सामने। हमने उसे पुकारा नहीं, हमने उसे मांगा बुलाया नहीं, उसके बारे में कोई विचार नहीं, सब्जी खरीद रहे और उधर से एकदम से आके ऊपर से देखता है हेलो, अचानक आ जाता है। वो कब आता है, किस स्थान पर आता है, उसकी स्टडी करनी है। किन परिस्थितियों में आता है, किन व्यक्ति के संदर्भ में आता है, सबके लिए नहीं आता है वो। कोई विशिष्ट व्यक्ति है उसके संपर्क में वो जुड़ता है वो विचार। तो व्यर्थ का विस्तार बहुत है, रोकना कठिन है, और आ जाता है तो अकेला कर देता है, दुखी कर देता है, उदास कर देता है, कुछ समझ नहीं आता है, परवश हो जाती आत्मा, विकर्म कर बैठती और बाद में सोचती ऐसा क्यों किया। अकेला हुआ और गया, अकेला होना ही नहीं है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, दृढ़ता को बढ़ाओ। उसके बाद आगे क्या कहा बाबा ने, महान आत्मा, महान पुण्य आत्मा कौन बनेगी, महान पूज्य आत्मा, वो संस्कार अभी भरने महानता के। फिर ग्रुप से मिला, याद प्यार में और विस्तार किया। बाबा ने मुबारक दी, किस बात की, चार बातों की, साधन की नहीं, किसकी, सेवा की, मेहनत की नहीं, मोहब्बत की, और चौथी तीसरी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और चौथी बैलेंस। कर्म योगी हो तुम, कर्म और योग का, कर्म है योग नहीं है, योग है और कर्म नहीं, यह भी नहीं चाहिए, इसको बैलेंस नहीं कहा जाता। दोनों चीजें साथ साथ हो तो ही कर्मातीत बनेंगे। हॉस्पिटैलिटी, जैसे ब्रह्मा ने प्रमाण दिखाया, जो यहां आए यहां से खुश होकर जाए, चाहे हम उसकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा न भी कर सके, परंतु हम अपने प्रकंपन, अपने वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं की सेवा कर सकते। लास्ट संडे के, लास्ट संडे की मुरली जैसे वो शस्त्र वाले जो है, तीव्र गति के शस्त्र है, शक्तिशाली शस्त्र है, एक स्थान पर बैठकर विनाश की किरणें दूर फैलाते हैं। तुम हो स्थापनाकारी, तुम अपनी रूहानी याद की किरणों से किसी भी आत्मा को क्या, टच कर सकते हो। तुम रूहानी याद की किरणों से, इन्वर्टेड कॉमा, किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। जरूरी नहीं है हम किसी को पकड़ पकड़ के ज्ञान ही सुनाए, हमारे वाइब्रेशंस भी तो कुछ है, हमने कुछ भी नहीं कहा फिर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अभी हम एक जगह गए थे, वहां एक बड़ा बुजुर्ग सा भाई है, 76 में वो ज्ञान में आया। उसने बताया वो कैसे ज्ञान में आया, अभी भी जो सेवा है उसकी सिक्योरिटी की सेवा, चुप, कोई ज्ञान नहीं सुना था, कुछ नहीं सुना था, पर उसने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो पहली बार उस प्रदर्शनी में गया तो दारू पी कर गया था और देखने लगा ये क्या है यहां पर, ये कौन से चित्र है, लक्ष्मी नारायण और ये बहने और ये सब क्या है, और बस उनको देख कर ही कुछ लगा कि ये कुछ तो है यहां। वो प्रदर्शनी मैदान में भरी थी, बहुत पी कर गया था फुल, और डोलने लगा सब उसके सामने, ये क्या दिख रहा है ये सब। और किसी से ज्ञान ज्यादा नहीं सुना, पर वहां के प्रकंपन ने ही उसको परिवर्तित कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया कि 76 से आज दिन तक बाबा की सेवा में अथक रूप से लगा हुआ, ऐसी कोई सेवा नहीं होगी उसने सेवा केंद्र की जो की नहीं, और चुप और मौन, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। कैसे भगवान ने चुना है एक एक को, कैसे निमित्त बनाया है आत्माओं को। नहीं तो हैंड्स कहां मिलते हैं सेवा केंद्रों पर, मुश्किल होता है। इस तरह के हैंड्स मिल जाए, टोटल कंप्लीट डेडिकेशन वाले। चार चीजों की मुबारक, सेवा की, अविनाशी बैंक ये भी खाता बाप दादा देख रहे, दूसरा मोहब्बत, मोहब्बत की मुबारक, तीसरा हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, जो आए उसकी सेवा हो, मनसा वाचा कर्मना। आज की मुरली शुद्ध करो गड़ा, जरा भी गंदगी ना हो अंदर। सुबह सुना ना, ये जब मनसा वाचा कर्मना शुद्ध होगा, स्वतः ही प्रकंपन निकलेंगे और आत्माओं की सेवा होगी। इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, इसकी करो, उसकी करो, नहीं, यह आत्मा कांच बन जाएगी, ऊपर से किरणें इस पर पड़ेगी और अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, जहां सकाश जाइए अपने जाना चाहिए वहां अपने आप जाएगी। सोचना नहीं पड़ेगा इसको दू या उसको दू, या इसका कुछ करूं या उसको कुछ करूं, जिसको जो चाहिए वो स्वतः ही उसको मिल जाएगा। हमने उसको पूछा भी नहीं, तुम किस लिए आए हो? खुशी के लिए आए हो, शांति के लिए आए हो, या एकाग्रता के लिए आए हो, क्या किसी एग्जाम में सफलता चाहिए? हमने कुछ नहीं कहा। स्वतः ही उसे मिलेगा अपने आप। तो ये चार बातें फिर से बाबा ने कहा। तुम्हारी जो पूजा भी होगी वो बीच में पॉइंट आ गई एक, किसी किसी की विधि पूर्वक और किसी किसी की काम चलाओ, और किसी किसी को पाइप लेके पूरे धुलाई हो जाएगी सबकी एक साथ, और किसी किसी की एक एक दो दो तीन तीन घंटा तक पूजा चलेगी। बाबा ने कहा इसका विस्तार बहुत है और पूजा का भी विस्तार बहुत है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। बाबा को मजा आता है, भगवान को किस किस बात में मजा आता है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर कहा पढ़ाई कम है और होमवर्क ज्यादा, बड़ी पावरफुल बात कह दी है। पढ़ बहुत रहे हो, होमवर्क कम कर रहे हो, लिख बहुत रहे हो, होमवर्क कम कर रहे हो। लिखना अर्थात जो सुन रहे हो वो लिख रहे हैं, वो नहीं करना है। अब होमवर्क करना है, क्लास वर्क बहुत कर लिया, पढ़ाई बहुत कर ली, पढ़ बहुत लिया, मुरली बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली, अब मुरलियों का चिंतन करना है, अब मुरलियों का मनन करना है। पहाड़ पर जाओ, छत पर जाओ, नदी के पास जाओ, कहा ना ये भले जाओ मनन के लिए, एकांत में बैठकर ज्ञान का चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है। ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, पॉइंट्स निकालने हैं मुरली से, शब्द निकालने हैं मुरली से, और एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर, एक एक वाक्य पर सोचना है, और इसी में बिजी रहना है। यही तो विधि है ज्ञान के खजाने से भरने से, यही तो विधि है व्यर्थ से मुक्त होने की, क्योंकि व्यर्थ का तो कोई विस्तार तो कोई अंत ही नहीं है। सुबह अगर पहला संकल्प व्यर्थ है तो सारे दिन भर व्यर्थ चलते रहता है, कितनी भी कोशिश करो नहीं रुकता है वो, कैसे रोकेंगे? बाबा ने कहा बहुत जबरदस्त कंट्रोलिंग पावर चाहिए, नहीं रुकता है। इसलिए जो जो अच्छा करना है तुरंत करना है, और जो जो बुरे संकल्प आते हैं उनका क्या करना है, तुरंत दान महापुण्य अब करो, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसा उसको उल्टा कर दो। क्रोध आ जाए तो उसको क्या करना, पोस्टपोन, क्रोध करूंगा पर अभी नहीं, उसको समझाना है, नहीं तो वो ऐसे मानता नहीं है, बाद में बाद में बाद में। टाइम वेस्ट करने का संकल्प है, आज छुट्टी है, आज क्या करूं, आहा हा, अच्छी नींद, लंबी सी नींद, आज थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूं जानबूझ के, थोड़ा घूमू फिरू, ये करूं वो करूं, ऐसा संकल्प आया तो क्या कर देना उसको, बोलना आज नहीं, आज नहीं, कल करेंगे। यहां पे झाटकू नहीं बन जाना, यहां पे तुरंतदान नहीं, यहां पे अब नहीं तो कब नहीं, नहीं बाद में बाद में बाद में। कभी कभी कुछ कुछ बाद में वाले निर्णय बहुत फायदे वाले होते हैं। जर्मन फिलोसोफर था इमैनुअल कैंट, बहुत स्ट्रिक्ट, लोग अपनी घड़ी सेट कर देते उसके आने के टाइमिंग देख के, हर कदम कदम फूक फूक के डालता था। और एक महिला थी, उसको बड़ा प्यार हो गया उससे, उसने बहुत इंतजार की ये बोलेगा ये बोलेगा, आखिर बोला ही नहीं तो खुद ही चली गई और कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इमैनुअल कैंट विचारक था, थिंकर, फिलोसोफर, उसने कहा ये विचार तो अच्छा है पर मुझे थोड़ा रिसर्च करना है इसके ऊपर। तो वो लाइब्रेरी में गया, विवाह के फायदे, विवाह के नुकसान, विवाह करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि विचारक है वो, बहुत गहराई से हर चीज के लिए सोचता है। 3 साल लग गए विचार करते करते, और आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा सारा कुछ स्टडी करने के बाद कि शादी करनी चाहिए। फायदा, क्योंकि शादी न करने का जो अनुभव है, करने का जो अनुभव है वो न करने से नहीं होगा, इसलिए ये एक फायदा हुआ। तो फिर आखिर फाइनल हो जाता है गहन अध्ययन, लाइब्रेरी में बैठ के सब कुछ करके आखिर जाता है उस महिला के घर। उस महिला के पिताजी दरवाजा खोलते, वो कहते हैं वो आपकी कन्या आई थी ना शादी करने, तो मैं तैयार हूं। वो कहता है उसकी तो शादी हो गई, उसके बच्चे भी है अभी। परंतु इमैनुअल कैंट अविवाहित ही रहा, उसके लिए एक रीति से फायदा भी हुआ, कोई बंधन कोई बाधा नहीं हुई उसके चिंतन में उसके विचारों में, नहीं तो व्यक्ति सबसे बड़ी बाधा बन जाती है हमारे इंटरनल पर्सनल लाइफ में, कोई दूसरा जब उसमें प्रवेश कर जाता है तो फिर बाबा के साथ जो जो है वो सब हट जाता है, दूर हो जाता है। इसके लिए जो करना है अभी करना है, अब करना है, और जो नहीं करना वो उसको पोस्टपोन कर देना। बुरे विचार आ रहे, व्यर्थ विचार आ रहे, निगेटिव संकल्प आ रहे, किसी को कुछ मैसेज करने के संकल्प आ रहे, खतरनाक मैसेज, बदले वाला मैसेज, इंसल्टिंग मैसेज, करना आज नहीं, कब करूंगा, कल, कल सुबह फर्स्ट पहली फुर्सत में वही करना है, पर आज नहीं, कल, कल, तो कल तक वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शब्द, मैसेजेस, वर्ड्स, ईमेल्स, ये सब एक बार निकल गए, रिटन या स्पोकन, वापस नहीं आते हो। तो सारी मुरली से, ढेर सारे स्लोगन से, 8 स्लोगन बताए, बहुत सारे होमवर्क है, कुछ पॉइंट्स निकालने हैं उसमें से जो मुझे करने हैं, और उस पर काम करना है, अपने आप को काम देना है। आप सबको कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं जिस पर बैठकर चिंतन करना है। पहला टॉपिक रूहानी जागृति, कैसे आए, क्यों नहीं आ रही है, किस नींद में मैं सोया हूं, सोई हूं, क्या करें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, इस जागरण के लिए, आत्मा जग जाए, चेत जाए, क्योंकि अभी शायद थोड़ी थोड़ी सो रही है, या फिर 24 घंटे में 10 मिनट बीच में सो जाती है, तभी माया आक्रमण करती है, माया को मार्जिन मिल जाती, माया आ जाती है, चांस मिल जाता है, अवसर उसको मिल जाता है, वो भी बहुत अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्टिक आ जाती है और पता नहीं चलने देती है, जब तक पता नहीं चलता है, जब तक हम उसमें फंस नहीं जाते, और फिर चिल्लाते पुकारते छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, नहीं छूट पाते। बाबा भी कहीं दूर दिखाई देता है। रूहानी जागृति। दूसरा, मेरे जीवन में व्यर्थ कहां कहां है और क्यों है, और यदि आ जाए तो उसे मैं कैसे रोकूं, कौन सी कंट्रोलिंग पावर का प्रयोग करूं, ये दूसरा काम। तीसरा, 4 खजाने जो बाबा ने कहे हैं उनको कैसे बढ़ाऊं, 5 खजाने क्या करूं, जो ज्ञान याद रहे, स्मरण में रहे, इमर्ज रहे, प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकूं, उसका स्वरूप बन सकूं। संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्प, बाबा ने कहा उससे क्या होता है, पदम गुना फल मिलता है। वो कैसे मिले, कुछ पावरफुल संकल्प, रोज की मुरली से नए संकल्प जमा करने, कल जो मुरली चलेगी सुनते सुनते ही पावरफुल संकल्प जमा करके रखने, ऐसे कैसे, तुरंदान महापुण्य करने वाले, ऐसे धक से झटकू होने वाली आत्माओं को, ऐसे अप करने वाले आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, बाप को साथी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे 5 खजानों जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे महाप्रसाद बनने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे शुद्ध संकल्प शुभ संकल्प को जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को ऐसे, जो करना है अब करने वाली आत्माओं, जो करेगा सो पाएगा ऐसे स्लोगन को याद रखने वाली आत्माओं को ऐसे, वरदानों से झोली भरने वाली आत्माओं को ऐसे, मुरली में और ऐसे, लवफुल लवफुल बाप के बच्चे या बाप समान लवफुल 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 आत्माओं को किधर से भी जोड़ो, अपना ही ज्ञान है। और ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को ऐसे, अभी जैसे ये याद पार अव्यक्त मुरली का है। अभी एक दूसरा काम आप सबको दे रहे हैं, साकार मुरली जो चलती है रोज, वो मुरली पूरी होने के बाद इस तरह का पूरा स्टेटमेंट रिपीट करना है, ऐसे 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 क्या क्या साकार मुरली में था, उसके लिए याद रखना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान से मुरली सुननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, पॉइंट्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, ताकि पूरी की पूरी मुरली एक लाइन में याद हो जाए। क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है तो परिस्थिति में याद होगा, जब परिस्थितियां नहीं है तभी ज्ञान बुद्धि में नहीं, तो जब परिस्थिति आएगी तो बुद्धि में कहां से आएगा। तो ऐसे ज्ञान बुद्धि में रखने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।